તારીખ 6/3/1992 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 741 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 340
અંતિમ સમારોહ હોને વાળા અંતિમ સમારોહ મેં ઉન્હોને જો વચન દિયા થા આગે કે હમ ઇસ ભાવ મેં આપકો અવશ્ય આત્મજ્ઞાન કી પ્રાપ્તિ કરાયેંગે આગે વચન દે ચુકે કે હમ ઇસ ભાવ મેં આપકો આત્મજ્ઞાન કી પ્રાપ્તિ કરાયેંગે શુદ્ધ જ્ઞાન કી શક્તિ ભાઈ ભૂત ભવિષ્ય વિના આવતી ગયા તો કહેતો હોય કે અભી ઇધર જાને કા વિચાર અભી ઇધર જાણા હૈ मालूम है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बहुत शरीर की अवस्था जीर्ण हो गई है, फिर भी आगे से सूचना दे रखी है कि अभी इधर जाने का प्रयास है। श्री डूंगर को आने के लिए विनंती करें, डूंगर भाई करके इनका मित्र थे, उनको भी आने को विनंती करें, उन्हें भी तैयार रखें। उनके चित्त में यूं आए कि बारंबार जाना होने से लोक अपेक्षा से योग्य नहीं दिखाई दे, हम बार बार जाएंगे, रायचंद भाई के संयोग में बार बार जाएंगे, लोग हमारी चर्चा करेंगे, लोग बातें करेंगे कि ये क्या है, ये बुरा लोग क्या है, लड़के के पीछे दौड़ते हैं, क्यों दौड़ते हैं। क्योंकि अवस्था में अंतर है, हमारी अवस्था शरीर की जो युवान है, आप लोगों की शरीर की अवस्था वृद्धावस्था है, शरीर की आप आत्मा की नहीं हो सकते, परंतु ऐसा विचार करना योग्य नहीं है। इतने वचन में ये बात मिलती है हमें, इससे ये उपदेश मिलता है कि पारमार्थिक विषयों में कहीं उम्र का हिसाब किताब नहीं करता। कोई छोटी उम्र वाले को कम ज्ञान हो, बड़ी उम्र वाले को ज्यादा ज्ञान हो, ज्यादा शास्त्र पढ़ा हो उसको ज्यादा ज्ञान हो, शास्त्र कम पढ़ा हो उसको कम ज्ञान हो, बहुत बुद्धिमान दिखता हो इसलिए ज्ञानी हो, ऐसा हिसाब किताब इसमें नहीं लगता है, ऐसी अपेक्षा नहीं करती। परंतु ऐसा विचार करना योग्य नहीं है। इसमें से दूसरा मतलब योग यह भी निकलता है कि आत्महित के विषय में लोक संज्ञा से नहीं चलना है हमें। क्या कहते हैं लोक संज्ञा, क्या कहते हैं तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग में हमारी इज्जत रहेगी कि नहीं रहेगी, हमारा स्थान जो है लोगों में स्थापित रहेगा या गिर जाएगा, हमारा स्थान का क्या, लोक में हमारा स्थान का क्या, ऐसी जो दृष्टि है कि लोक संज्ञा वाली दृष्टि, श्रीमद जी ने ऐसी दृष्टि को काल खुद जय बोला है, अलाहल जय बोला है, इस दृष्टि से कभी शर्म नहीं होता। इसलिए ऐसा विचार कभी नहीं करना कि लोग क्या सोचेंगे हमारे विषय में, हमारा आत्मा का हित होता है, यही फर्स्ट प्रायोरिटी है, यही मुख्य बात है, और सारे जगत का विषय इसके आगे गाँव दुर्गति के दुख में से कोई लोग छुड़ाने को आए कि ऐसा तो करने वाला है नहीं, जिसकी हम शरण भरते हैं, समाज की शरण भरते हैं, खास करके जो संप्रदाय मुक्ति वाले होते हैं वो कहते हैं क्या करें, समाज के साथ रहना है। समाज कोई अलग चीज है पर धर्म कोई अलग चीज होती है। धर्म का संबंध अपनी श्रद्धा के साथ होता है, अपने श्रद्धा का संबंध समाज के साथ कभी नहीं होता। ये दो विषय अलग अलग खटाने में होना चाहिए, बहुत अच्छा। दोनों एक साथ जोड़ने में से लोक संज्ञा पैदा हो जाएगी और लोक संज्ञा पैदा होने से अपनी दुर्गति निश्चित हो जाएगी। जिसकी शर्म भरी है हमें, इस लोगों की शर्म भरी है, वो लोग हमको छोड़ा नहीं सकते। इसलिए ऐसा कहा कि ऐसा विचार करना योग्य नहीं है। देखो एक छोटे से बात में से कितनी बात निकलती है। परमार्थ दृष्टि पुरुष को अवश्य करने योग्य ऐसे समाज उनके लाभ में यह विकल्प का अंतराय कर्तव्य नहीं है। क्या कहते हैं कि परमार्थ दृष्टि पुरुष को, ऐसा पुरुष बताया मनुष्य को ऐसा कहा है कि जिसको आत्मकल्याण की मुख्यता होती है उसको परमार्थ दृष्टि पुरुष कहने में आया है। परमार्थ मैंने परम प्रयोजन, परम अर्थ मैंने परम प्रयोजन, परम प्रयोजन मैंने परम आत्महित, वही अपना परम प्रयोजन है। उसकी जिसको दृष्टि है ऐसे पुरुष नाम आत्मा को, पुरुष मैंने पुरुष की ऐसी बात नहीं है, ऐसे आत्मा को अवश्य करने योग्य ऐसे समागम के लाभ में, जिस सत्पुरुष का समागम हो, ज्ञानी पुरुष का समागम, समागम का लाभ मिलता हो, ऐसे लाभ में ऐसे लोक संज्ञा वाले, लोक अपेक्षा वाले विकल्प रूप अंतराय कर्तव्य नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों के जाने मेरा आत्मकल्याण है, लोग तो पैसों में भी शर्म नहीं रखते, ना पैसा का मामला खड़ा होता है, भाई भाई के नहीं रखता, बाप बेटे के नहीं रखता, होता है कि नहीं होता है संसार में। पैसे जैसी शुद्ध चीज उसमें भी कोई शर्म नहीं भरते, तो ये तो परम आत्महित अनंत काल का हिसाब किताब लगता है बच्चे का, हित हो गया तो अनंत काल का हित हो जाएगा, अहित हो जाएगा तो न जाने कितना अनंत काल भरेगा जीव संसार में परिभ्रमण करेगा। इसलिए ऐसा विकल्प रूप अभिप्राय कर्तव्य नहीं है। इस बार समागम का विशेष लाभ होना योग्य है। क्या लिखा प्रॉमिस दिया था ने? भाई ये बात निकलती है सुभाष भाई का एक पत्र मिला है, अंतिम पत्र जो खुद तो नहीं लिख सकते थे, उन्होंने लिखा है कि इधर से आने के बाद एक हफ्ते के बाद पत्र लिखा है कि तीन चार दिन पहले आपकी कृपा है मेरा देवर आत्मा फरार जैसे भिन्न हो गया है और अभी सह जैसी अवस्था चल रही है। देव से भिन्न आत्मा का मैं अनुभव करता हूं, ये अनुभूति की परिणति चालू है। बाकी ये अनुभव हुआ बाद में 17-18 दिन के बाद कार्यक्रम पूरा हुआ और यही भव की अंतिम अवस्था में अनंत भाव का खेद करके चले गए। तो ये बात कही है कि इस बार
मद्रास पत्रांक 743 आनंद जी का इस पद का उद्धरण किया है। मोक्ष मार्ग में मुनि कैसे होते हैं उसकी परिभाषा किया है। आनंद जी श्वेतांबर संप्रदाय के एक मुनि थे जिन्होंने दिगंबर साहित्य का काफी अध्ययन किया था और दिगंबर साहित्य का अध्ययन करने के बाद उनको ये तत्व बहुत रुचा था। दिगंबराचार्यों ने जो परमागमों में तत्व भरा है उस तत्व की उनको बहुत रुचि हुई थी और इस रुचि के वशात उन्होंने अपने जो पद रहते हैं कवि थे बहुत अच्छे कवि थे उसमें उसकी झलक दिखाई देती है। गुरुदेव जी कभी कभी आनंदगंज जी के पद को दोहराते थे। श्रीमद जी ने भी बार बार दोहराया है और एक दफे हमें प्रश्न हुआ गुरुदेव को पूछा हमने महाराज ये आनंदगंज जी के पद में भी कुछ तत्व की झलक दिखाई देती है वो तो सही तत्व की झलक है वो कैसा हुआ है वैसे आपका क्या इस विषय में अभिप्राय है। तो ये अभिप्राय गुरुदेव ने बताया आनंदगंज जी और बेलचंद जी ऐसे श्वेतांबर के जो पिछले दो तीन सैकड़ों में जो मुनि हुए हैं उसमें ये दो मुनि हैं इन्होंने दिगंबर साहित्य का बहुत अच्छा अध्ययन किया और उन लोगों की रुचि भी बहुत जमी उसमें और आनंदगंज के लिए तो सुना जाता है कि उन्होंने संप्रदाय का त्याग कर दिया था। करीब वो मारवाड़ में घूमते थे विचरते थे एक दफे मारवाड़ के टाउन में उनका प्रवचन चलता था तो उस एरिया में ऐसी पद्धति थी कि जो संघपति आए बाद में ही व्याख्यान महाराज चालू करे ऐसे चालू नहीं कर दे। आनंदगंज जी को तो किसी संघपति या फिर लोग को करवा नहीं थे उन्होंने तो अपने निश्चित समय करके प्रवचन कर दिया। प्रवचन तो फिर तो आकर बैठ गए थे बाद में उन्होंने टिप्पणी किया सबका दिया कि महाराज आप नहीं जानते क्या हमारे यहाँ क्या रिवाज है कि संघपति आने के बाद प्रवचन चालू होता है आपने कैसे चालू कर दिया। उसी वक्त गांव छोड़ के चले गए क्योंकि तुम लोग हमें रोटी देते हैं इसलिए तुम हमें परागम रखना चाहते हैं क्या। फिर वो कहा गए इधर चले गए किसी को पता नहीं है ऐसा सुना ही होता है कि सारा संप्रदाय को छोड़ करके जिस संप्रदाय में तत्व की कीमत नहीं हो जो तत्व को समझने के लायक सारा संप्रदाय ही नहीं हो तो संप्रदाय में रहकर भी क्या करना है क्या लेना है। और मुनि तो निष्काम होता है वो तो पढ़ लिख रहे हैं वो तो मुनि तो निष्कामी होते हैं कैसे मुनि होते ऐसा तो एक पद लिखा है कि सकल संसारी इंद्रिय रामी सकल संसारी जीव अपने इंद्रिय विषयों में इंद्रिय भावों से रमणता करने वाले हैं रमते हैं चक्षुर होते हैं सकल संसारी इंद्रिय रामी मुनिगण आत्म रामी है मुनिगण होते हैं वो तो आत्म रामी हो आत्मा में रमने वाले होते हैं उसी को हम मुनि कहते हैं जो आत्मा में नहीं रमे वो मुनि नहीं है क्योंकि रमने का तो दो स्थान है एक तो अतीन्द्रिय आत्मा में रमणता करे या तो संसार के परिणामों में इंद्रिय भावों में रमणता करे दूसरी से कोई जगह
नहीं है
जन्म परिणाम को। तो उन्होंने ये मुनि की परिभाषा बनाई है कि सकल संसारी इंद्रिय रामी मुनिगण आत्म रामी रे। मुख्य पड़े जो आत्म रामे तो कहिए निष्काम रे, तो कहिए निष्काम। और जो आत्म रामी होता है वो निष्काम नहीं होता है, उसको कोई कामना किसी से अपेक्षा हो ये आत्म रामी नहीं हो सकता। जिस आत्मा में अनंत अनंत सुख भरा है पर उस सुख की चाह में दिन रात कहे सद ध्यान मही सुखदान अनंत सुसंत तेरी दिन रात रहे सद ध्यान मही। ऐसे सुख में से जो निकलना नहीं चाहते हैं आत्म सुख है तो इंद्रियों के परिणामों जो दुख भाव है उसमें रुचि नहीं रखते, इसलिए उसमें उसकी रमणता नहीं होती। तो मुख्यपणे जो मुनिराज है वो आत्मरामी होते हैं और वो निष्कामी होते हैं, उनको जगत से कोई लेना देना नहीं है। जग को दे दी जग की विधिया, जगत की निधि जगत को सौंप दे और निकल गए। ये पत्र भी श्रीमद जी के संपर्क में आए हुए स्थानिक वासी मुनि थे लल्लू जी, उनको लिखा गया है। तो देखते मुनि तो ऐसा होता है, ऐसा हमने इस पद में कहा ऐसा मुनि होता है, क्योंकि मुनि को पत्र लिख रहे हैं वो मुनि बेचने थे, मुनि नहीं थे लेकिन मुनि बेचने थे, पर गृहस्थ को तो मुंडन करते थे। श्रीमद जी को उम्र में भी बड़े थे और बाहर में उसका स्थान भी ऊंचा था, मुनि बेचने थे इसलिए। लेकिन उन्होंने ये समझा कि कोई मुनिपना हमारे में है ही नहीं, हम तो मुनि है ही नहीं, वास्तव में हमें कुछ लेना है तो उसके चरण में हमें जाना चाहिए, भले ही गृहस्थ हो लेकिन आत्मज्ञान संपन्न तो है ही, इसलिए उनकी भक्ति करते थे। और जरूरी सूचना पत्र व्यवहार से श्रीमद जी उनको देते थे। लिखते हैं कि तीन पत्र मिले थे, अभी लगभग 15 दिन से यहाँ स्थिति है मोरबी में, मोरबी आए हैं लगभग 15 दिन से यहाँ मोरबी में हम आए हैं, अभी यहाँ और थोड़े दिन रहना संभव है। पत्र आकांक्षा और दर्शन आकांक्षा मालूम हुई है, तो मुनि ने क्या लिखा था कि हमको आपका दर्शन करना है। मुनि देश में थे लेकिन वो गृहस्थ में थे जो श्रीमद जी, उनका दर्शन की आकांक्षा रखते थे और पत्र की भी आकांक्षा रखते थे। कहते हैं उन्हें समझते वो लोग कहते देखो उनको मुनि ने ऐसा संबोधन किया है, वो तो देश में थे इसलिए मुनि ऐसा लिखा है, देश की अपेक्षा ताकि मुनि हो गए और गृहस्थ का दर्शन की आकांक्षा रखते वो बात तो संभव नहीं है। इसलिए पत्र आकांक्षा और दर्शन आकांक्षा मालूम हुई है तुम्हारे पत्र से, अभी पत्र आदि लिखने में बहुत ही कम प्रवृत्ति हो सकती है, मेरी प्रवृत्ति पत्र आदि लिखने में बहुत कम रहती है, इसलिए कि मेरे विकल्प इतने विकल्प नहीं दौड़ते, इतने विकल्प नहीं चलते, इसलिए विकल्प कुछ शांत हो गए हैं तो विकल्प अनुसार प्रवृत्ति भी शांत हो गई है। 30 साल की उम्र में उन्होंने निवृत्ति ले ली व्यापार से व्यवसाय से, 20 साल की उम्र में वे जुड़े, 6 महीने के बाद उनकी शादी हुई, पर 4 साल के बाद उनको आत्मज्ञान हुआ गृहस्थी में, वैराग्य तो था ही मुमुक्षु की भूमिका में, सम्यक दर्शन स्वानुभव के पहले आत्मज्ञान के पहले वैराग्य तो बहुत था, और आत्मज्ञान होने के बाद वैराग्य वृद्धि हो गया। 24-25 साल की उम्र के पत्र देखते हैं तो हम वो लिखते हैं कि हमें गंदा व्यापार छोड़ देना है। क्या 25 साल की उम्र में 5 साल अभी तो हुआ है गंदा चालू किया, पर 25 साल मैंने युवानी का प्रारंभ समझो, इतना वैराग्य था कि हमें व्यवसाय छोड़ देना है। व्यवसाय छोड़ने का इनका जो परिणाम था, फिर भी कोई परिस्थिति अनुकूल नहीं थी। 28 साल 29 साल की उम्र में तो अपने पार्टनर्स जो थे, बहुत बड़ा ग्रुप था उनका बंबई में, मिल गया कि अब मेरे बच्चे नहीं है, मेरे परिणाम, मैं अभी कोई व्यवसाय करने के लायक नहीं रहा, मुझे तो छोड़ना है, मेरा जो हिस्सा है तो काट दो, मेरी पार्टनरशिप बंद कर दो, मैं नहीं आ सकता। उन्होंने बोला कि आप कम आइए, नहीं आइए, लेकिन आपको छोड़ना तो नहीं है। फिर भी 1-2 साल वैसे चलाया तो कम गए। 30 साल की उम्र में तो उन्होंने बोला, लिख दिया, बोला क्या यहां से लिख दिया देश में आके कि हमारे खाते में जो भी रकम जमा है मुनाफे से, वो तो वर्किंग पार्टनर थे, फाइनेंसिंग पार्टनर तो अलग लोग थे, तो हमारे छोटे भाई के नामे जमा कर देना, मैं तो अभी आने वाला हूं। और मुझे धंधा पे 30 साल में एक युवा की उम्र ही समझी जाती है, निवृत्त हो गए। 30 साल की उम्र में वो निवृत्त हो गए। पैसा बहुत वैराग्य थे, तो विश्व को कहने का मतलब इसलिए है कि मुमुक्षुओं को पत्र लिखने का भी उनका परिणाम काम नहीं करता। क्या लिखा है, अभी पत्र आदि लिखने में बहुत ही कम प्रवृत्ति हो सकती है, दूसरी प्रवृत्ति को मैं कहां से करूं। समागम के बारे में अभी कुछ भी उत्तर लिखना असत्य है, तब आपसे मिल सकता हूं, मेरा समागम तब मिलेगा, मैं कोई बता नहीं सकता, कोई निश्चित नहीं हो सकता वो बात मेरे विचार में। श्री लल्लू जी और देवकरण जी आत्मसिद्धि शास्त्र का विशेषतः मनन करें कि आत्मसिद्धि शास्त्र की जो रचना स्वयं ने की थी, उनका विशेषतः मनन करने के लिए सूचना दी है कि ये दो मुनियों को इस शास्त्र का अच्छी तरह मनन करना है। दूसरे मुनियों को भी प्रश्न व्याकरण आदि सूत्र सत्पुरुष के लक्ष्य से सुनाया जाए तो सुनाए। क्या तुम्हारे साथ दूसरे भी मुनि हैं जो तुम्हारे साथ तुम्हारे से कुछ कम जानकार है या कम योग्यता वाले हैं, जो तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे साथ चलते हैं, उनको तुम प्रश्न व्याकरण के शास्त्र सुनाओ तो शत्रु के लक्ष्य से सुनाना। क्या सीखना भी
सत्पुरुष के लक्ष्य
के, सत्पुरुष का प्रत्यक्ष समागम है उतना उपकारी ये शास्त्र होने वाला नहीं है, इसके लक्ष्य से सुनाना। प्रत्यक्ष सतपुरुष सदगुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार, ये बात तो उन्होंने आत्मसिद्धि शास्त्र में भी लिखी है। और जो शास्त्र है जो उनकी सूचना देते हैं, ऐसी सूचना देते हैं कि तुम उसको सतपुरुष से लक्ष्य से सुनाना।
योगनी
बात है, सत्पुरुष में मुख्य लक्ष्य राखो मैं कहते हैं। शास्त्र में वरना ऐसा होता है कि शास्त्र को अध्ययन करने वाले को एक संतोष पैदा हो जाता है, तो भले ही हम सत्पुरुष के प्रत्यक्ष समागम में नहीं जाते हैं, लेकिन शास्त्र तो पढ़ते हैं ना। हमारे गांव में, हमारे घर में बैठ करके या हमारे मंदिर जी में जाकर के रोज शास्त्र तो पढ़ते हैं, वो भी सत्पुरुष के ही वचन है और हम जाए कहीं तो भी सुनने में भी सत्पुरुष के वचन मिलते हैं और पढ़ने में भी सत्पुरुष के वचन मिलते हैं तो ठीक है दोनों बातें एक से हो गई क्या एक से हो गई क्या परोक्ष और प्रत्यक्षता में बहुत बड़ा अंतर है इतना बड़ा अंतर है कि प्रत्यक्ष समागम का कोई अल्टरनेटिव कोई विकल्प कोई दूसरा पर्याय नहीं होता प्रत्यक्षता का कोई दूसरा पर्याय नहीं कोई दूसरा विकल्प नहीं कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है हमारे कार्य में भी ये बात अच्छी तरह प्रयोग करते हैं जैसे अभी कम्युनिकेशन के कितने साधन हैं संपर्क साधन संपर्क सूत्र के कितने साधन हैं कि हम चिट्ठी लिख सकते हैं हम आदमी से हमारा संदेशा भेज सकते हैं हम टेलीफोन से तार से टेलीफोन से हमारी बात बता सकते हैं और तार टेलीफोन से आगे जाकर अभी फैक्स हो गया है और फैक्स में भी टेलीविजन आ गया है कि जिसके साथ आप बात करते हो सामने दिखाई देता है और कॉन्फ्रेंस चलती है उसके ऊपर आजकल तो विश्व में फिर भी ये रूबरू कॉन्फ्रेंस क्यों होती है इतने साधन होने के बावजूद भी प्रत्यक्ष भेंट होने की प्रत्यक्ष चर्चा करने के लिए क्या जरूरत पैदा होती है इसमें आवश्यकता क्यों महसूस होती है हमें कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है ना उसमें तो आमने सामने ही दिखते हैं सुना और चेहरा मिलना दोनों मिलता है फिर भी ये बात प्रत्यक्षता में जितनी हो सकती है उतनी परोक्षता में नहीं हो सकती हाँ तो शास्त्र मानकर सत्पुरुष ना लक्ष्य करो ये बात में गौण न खाए सत्पुरुष लक्ष्य में विषय होते हैं कि जिसका लक्ष्य होता है उसकी मुख्यता रहती है क्या एक परिणाम का विज्ञान है कि जिसका लक्ष्य रहता है उसकी मुख्यता रहती है जैसे कोई अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए खर्च करता है तो खर्च करता है उसमें तो नुकसान जाता है लेकिन लक्ष्य कहाँ है तो इज्जत बढ़ेगी तो पैसा भी और मिल सकता है अगर इज्जत नहीं तो कैसे मिलने वाला है तो लक्ष्य है उसकी मुख्यता रहती है खर्च करने के वक्त भी ऐसे ज्ञानी को सुहराग होता है लेकिन लक्ष्य आत्मा का होता है अज्ञान के सामने क्या गिनती होती है कि कितने अशुभ परिणाम हुए कितना पाप बढ़ गया कितने शुभ परिणाम हुए कितना पुण्य बढ़ा ऐसे वो जो खाता है जमा उधार का पुण्य पाप का उसका हिसाब किताब लोग लगाते रहते हैं ये एक जुड़ा अलग विषय है कि जहां पुण्य पाप का हिसाब गौण होकर के ज्ञान में कहां लक्ष्य पड़ा है किसकी मुख्यता है वो पहले जांच करो प्रत्यक्ष करो प्रत्यक्ष हमारे पास कोई बात आती है तो हम क्या सोचते हैं कि आज मैं किस लक्ष्य से बात करता हूँ चलो ये तो देखो कोई हमारी शायद की अच्छी बात हो हमारी फेवरेबल बात हो तो भी हम क्या देखते हैं उनका लक्ष्य कहाँ पड़ा है वो पहले देख लो फेवरेबल हम फेवरेबल बात नहीं देखेंगे और उसी में तो बुद्धिमानी है अगर ऐसा नहीं सोचा जाएगा तो कहीं फंस जाएगा तो अच्छी बात करने वाले को वो फंसेगा ही फंसेगा तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है इस विषय में कि किसी भी मनुष्य का लक्ष्य कहाँ है तो लक्ष्य के दौरान सभी परिणाम ये भी आनंद जी का पत्र दे रहा है, साथ से तुम्हारे इतना पत्र है खंभात का एक मुमुक्ष हुए त्रिभुवन दास माणिक सिंह करके उनके पर लिखा हुआ गया पत्र है। तीन बात भाकर जोड़ी जिन्हें आगे चलिए समय तरह से वास्तवी जो जब आनंद घन लीजिए रसिक पड़े हैं उनके अध्यात्म रस से भरे हुए पड़े हैं उनके एक अभी किताब निकला हुआ पर और चौबीस के संकर के चौबीस की तो लिखी हुई है इसके अलग भी एक सौ पर और भी किताब मिली है लिखी है अध्यात्म अच्छा रखा है उसको। भगवान गुणेन्द्र देव के सामने हाथ जोड़ के हम खड़े रहते हैं क्यों अरे माते किसके लिए माते मैंने किसके लिए उसके लिए हम भगवान के गुणेन्द्र देव के जिनमें आगे जिनमें के आगे इसलिए हम कर रहे के हाथ जोड़ के खड़े रहे हैं क्यों समय करें से वास्तव शुद्ध आत्मा शुद्धात्मा का आचरण हो ऐसी सेवा हमें देना है ऐसी शुद्ध सेवा हमें देना क्या क्या किसकी मांगने किया मांगते भी किया ऐसा नहीं कहा कि हमारे जीवन पर्यंत अनुकूलता बने रहे हमारा पुण्योदय चालू रहे हमारे परिवार या हमारे कारोबार में कोई आपत्ति नहीं आए ऐसी कोई बात संसार की कोई चीज की मांग नहीं किया है समय करें सेवा शुद्ध दे दो हमारा जो शुद्ध आत्मा है समय का स्वरूप उसका चरण मैंने उसका अनुचरण उसका आचरण आत्मचारित्र जिसको सम्यक चारित्र कहने में आता है उसको वितराग भाव कहने में आता है वितरागता है तो समय चरण है समय चरण क्या चीज है तो वितरागता है वो समय चरण है तो शुद्ध वितरागता से हमें प्राप्ति हो ऐसा आनंद होंगी जिस प्रकार से वितरागता से प्राप्ति हो आनंद घन लिए लिए मैंने प्राप्त करे ऐसी शुद्ध वितरागता प्राप्ति हो ऐसे आनंद घन जी की विनंती है। ये पद का उदाहरण करके फिर लिखते हैं कि कर्मग्रंथ नाम का शास्त्र है उसे अभी आदि से अंत तक पढ़ने का सुनने का और अनुप्रेक्षा करने का परिचय रख सके तो रखें क्या है अलग अलग मुमुक्षुओं को वो अलग अलग सूचना देते हैं किसकी योग्यता कैसी है किसकी योग्यता कैसी है किसकी योग्यता कैसी है कैसी है वो अच्छी तरह पहचान सकते थे एक विशेषता थी उनकी प्रज्ञा में कि जो समीप में समागम में आने वाले मनुष्य को अच्छी तरह पहचान लेते थे कि उसको किस चीज की जरूरत है उसको किस चीज की जरूरत है उसको किस चीज की जरूरत है सबको एक सा उपदेश का बात नहीं करते थे जो समस्तगत होती है समस्तगत उपदेश में क्या होता है कि योग्यता के अनुसार बात नहीं होती है क्योंकि उसमें अनेक प्रकार की योग्यता वाले सभा में बैठते हैं तो योग्यता देख करके बात नहीं हो रही उसमें जो सैद्धांतिक बात होती है जो शासन में कही जाती हो वो शासन परंपरा के अनुसार उपदेश दिया जाता है तो उसमें पात्रता देख करके बात करने का मौका नहीं है कि इसकी पात्रता इतनी है इससे ज्यादा उनको भी बात नहीं करनी चाहिए इसकी पात्रता इतनी अच्छी नहीं है तो इससे ज्यादा उसको बात नहीं करनी चाहिए तो समस्तगत उपदेश में हो ही नहीं सकता संभव नहीं है लेकिन उनका जो उदय है वो समस्तगत उपदेश करने का नहीं रहा व्यक्तिगत जो परिचय में जो जो मोक्ष आए योग्यता को अच्छी तरह ज्ञान में लेकर के अब इस वक्त उनको किस चीज की जरूरत है? क्योंकि संसारी जीव है वो भाव में मरी है, शरीर में भले कितना ही तंदुरुस्त हो लेकिन भाव का रोगी है, मरीज है। तो मरीज को तो सभी दर्दी को एक बराबर नहीं दे सकते, और दिन तो कोई सुधार होने का भी संभव नहीं है, किसी को बगाड़ भी हो सकता है। इसलिए यही बात बनी कि भगवान ऋषभदेव स्वामी ने जब दिल धरी निकली उपदेश चालू किया समय शरण में, तो प्रसंग तो समस्त के उपदेश का था। कितने जीवों की ऐसी योग्यता थी को सुनने के लायक नहीं थे, भव्य थे फिर भी सुनने के लायक नहीं थे। तो उसमें 363 अन्य मत वहां से पैदा हो गए, कैसे पैदा हो गए? तो भगवान की वाणी खिली 363 अन्य मत खड़े हो गए। तो क्या भगवान को वाणी बंद कर देना चाहिए क्या? ये लायक प्राणियों के लिए होती है। बहुतों को लाभ हुआ, कईयों को लाभ हुआ, ये जो लाभ हुआ इसकी मुख्यता है, नुकसान हुआ इसकी मुख्यता नहीं करनी चाहिए कभी कि किसको कितना नुकसान होता है। एक अच्छा काम होता है तो कोई अयोग्य प्राणियों को विपरीत भाव आने से नुकसान भी हो सकता है, तो कोई अच्छा काम बंद कर दे रहे ये कोई बात ठीक नहीं है। भगवान की वाणी भी ऐसी चली है शुरू से ही, प्रारंभ से ही आदि बात कीर्तन करते हुए बात चली है। तो व्यक्तिगत विषय में ऐसा नहीं करता, ज्ञानी पुरुष है जब कोई व्यक्ति उनके समीप समागम में आते हैं तो उनको अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो ये आदमी बहुत कमजोर है, उसको सालन पाक खिलाया नहीं जाएगा, उसको तो मुंह का पानी देना पड़ेगा,
बराबर
उसको तो मिठाई नहीं खिला सकते। लेकिन बहुत कमजोर हो गया है तो घी खिलाए तो पगड़ा होने से नहीं होने तो मर जाए, उसको घी खिला दे तो मर जाएगा। तो व्यक्ति जो पसंद पड़ता है ज्ञानियों को तो जिस लायक होता है उस लायक है उसको वो बात करते हैं कि तुमको ये पढ़ना चाहिए, तुमको ये विचार करना चाहिए, उसका समागम मारना चाहिए। ऐसे ना भी त्रिभुवन भाई को उन्होंने कर्म ग्रंथ का अभ्यास करने के लिए कहा है, कोई ऐसी उनकी योग्यता देती होगी। निमित्त नहीं कहा जाता उसको, क्या हमारी निमित्त पर नाम की समझ नहीं है, गैर समझ है। भगवान के बारे को वहां निमित्त नहीं बोला जाता, लौकिक व्यवहार से हम निमित्त कहते हैं कि वाणी सुन के अनियमित हो गए। वाणी सुनने में अनियमित होने का निमित्त तत्व है नहीं, भगवान की प्रतिमा में दर्शन करने से उसको नुकसान हो गए ऐसा निमित्त तत्व है नहीं। जो कोई जिन प्रतिमा का भी विरोध कर देता है तो उसके निमित्त से विरोध किया तो क्या भगवान की प्रतिमा में दोष है क्या? तो शुद्ध निरंजन विकास प्रतिमा है, अरविंद प्रतिमा है, उसका भी विरोध करने वाले कर देते हैं। तो उसमें निमित्त तत्व नहीं है, एक योग्यता जीवों की ऐसी होती है कि जिससे वो अपने आप से अपना नुकसान करने कर बाना किसी का भी बना लेता है वो, तो जिसकी योग्यता ही ऐसी हीन योग्यता है, किसी न किसी बाने वो परिणाम तो उल्टा ही करने वाला है, उल्टा करने वाला है ही नहीं, तो खुद बाना पर पकड़ देता है। देव गुरु शास्त्र और सब पुरुष उनमें कहीं भी दूसरे को नुकसान हो गए ऐसी योग्यता है ही ऐसा भूमि तत्व नहीं है, नहीं है ऐसी बात है। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध जो है वो सदृशता में जुड़ा जाता है, दूसदृशता में निमित्त नैमित्तिक संबंध लागू कर सकते हैं। क्या तो भगवान के उपदेश में ये बात थी कि आत्मज्ञान कैसे करना, आत्मज्ञान कैसे करना, आत्मदर्शन कैसे करना, विपरायता कैसे प्रकट करना, वो बात थी। तो वो बात जिन्होंने अंगीकार कर ली उसका निमित्त बोला जाता है, लेकिन भगवान ने कुछ किया
नहीं,
निमित्त कुछ करता नहीं, करता तो समाधा कर लेता, अथवा किसी को छोड़ता। जितने भी समय शरण में आए हुए उनका हित कर देते, लेकिन समय का हित होता
नहीं।
समय शरण में भी मिथ्या दृष्टियों से सम्यक दृष्टियों की संख्या हमेशा कम रही। तीनों काल में सम्यक दृष्टियों में भी पंचम गुण स्थान वाले इससे भी कम थे, और सप्तम सप्तम गुण स्थान वाले मुनिरा थे इससे भी कम थे। और उस आराधना में आगे बढ़े हुए केवल इससे भी कम थे। तो जैसे जैसे ऊपर ऊपर की चीज होती है तो महंगी इसलिए होती है कि उसकी प्राप्ति उपलब्धि ही कम होती है। लोहा है वो लाखों टन में पैदा होता है क्या? सोना लाखों टन में पैदा होता है क्या? तो तोड़े में उसके रिफाइनरी में तोड़े में आंकड़ा देती है, और वो टनों में आंकड़ा देती है। 1000 किलो का जमीन ग्राम होता है, इधर भी तोड़ा का होता है, 10 ग्राम का होता है, 1 ग्राम का होता है, पर हीरा का हो तो ग्राम का भी नहीं हो, वो कैरेट में और सेंट में उसका नाप किया जाता है, क्योंकि चीज महंगी है, उपलब्धि भी कम है उसकी। तो इसलिए जिसकी संख्या कम है उसकी कीमत ज्यादा है। हम ये सोचते हैं कभी कभी कि ऐसा धर्म है किसको प्राप्त हो सकता है, क्या ज्यादा को हो सकता है? ये तो बहुत कम को होने वाला है। अरे बहुत कम को होने वाले यही इसकी महत्वपूर्ण परिस्थिति है, इसमें इसकी महत्ता है। कहीं लोग ऐसे निराश हो जाते हैं, ये तो बहुत सूक्ष्म बातें हैं, बहुत कठिन बातें हैं, ऐसा धर्म कहां से प्राप्त हो सकता है, या कितने को हो सकता है संसार में? अरे एक को भी हो गए तो सिपाही में चले जाएगा, इसका फल निर्वाण फल है।
प्रतिमा जनता उसका विरोध करने का नुकसान क्या
होता? उसका विरोध करने से नुकसान का अंतिम परिस्थिति बिगड़ती है। संसार के कषाय में, विषय कषाय में पड़े वाले तीव्र पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे, मध्यम पाप करेंगे तो तिरंत में जाएंगे, लेकिन विकराग देव गुरु शास्त्र सत्पुरुष का विरोध करने वाला विरोध में चला जाता है। अगर आप कोई स्टेशन कर ले, दो स्टेशन कर ले, एक दो भाव कर ले, दूसरी बात है इधर ये क्या गिनती है? है इधर ये वो सीधा ही है, और क्या है? ये तो बहुत सतर्क रहने की चीज है। इसलिए मुमुक्षुओं को कम से कम ये सोचना है कि हम यहाँ हमारा आत्मलाभ के लिए कर्म के क्षेत्र में आते हैं, कुछ धार्मिक प्रवृत्तियां भी करते हैं, कहीं नुकसान नहीं हो जाए। धंधा करने को जाएंगे मुनाफा लेने को, कहीं नुकसान नहीं हो जाए। इसलिए कहीं भी जहां तक सम्यक ज्ञान नहीं हो गए, मुमुक्षुओं को कहीं भी अपना अभिप्राय पूर्वग्रह मांग लेना नहीं चाहिए, क्योंकि खुद ही अज्ञानी है। उसका ड्यूटी, उसका धर्म उतना ही है कि जिज्ञासा में रहे, और जो भी इस विषय के तज्ञ है, मर्मज्ञ है, जो ज्ञानी है, उससे वो अभिप्राय पूछताछ करके, चर्चा करके, अंधश्रद्धा से बराबर वो समझे कि क्या मेरा विचार ठीक है या मेरा विचार ठीक परिस्थिति में नहीं है। एक शरीर का रोगी डॉक्टर से दवा लेता है तो उसमें अपना खुद का अभिप्राय काम करता है क्या? डॉक्टर को भी बोल सकता है कि मैं आपने इंजेक्शन बताया वो नहीं, मैं दूसरा वो ले लो, कह तुम्हारी नहीं चलती, मुझे बुलाया तो मैं कहूँ ऐसा करना पड़ेगा। शरीर का गंभीर रोग होता है तो सरेंडर होकर के इलाज करना पड़ता है। क्या कितना सरेंडर रहना पड़ता है कि तुमको इस कोठरी में एक महीना रहना है, कोठरी क्या एसड्रम कोठरी, एक महीना तक बाहर कदम नहीं रख सकते, अरे पलंग के नीचे बेड के नीचे नहीं जा सकते, लेटरिन भी वहां करना है, तुफान भी वहां करना है, खाना भी वहां खाना है, बात नहीं करना किसी को, इंसेंटिव को नहीं आने देते, भाई को नहीं आने देते, पत्नी को नहीं आने देते, पिता को नहीं आने देते, माँ को नहीं आने देते, सरेंडर होना पड़ता है। क्यों? रोग मिटाने की गरज है। एक मृत्यु से बचना है, एक रोग से बचना है तो पूरा पूरी ताबेदारी शरणागति स्वीकारनी पड़ती है। अनंत भाव का भाव रोग मिटाना है, और ज्ञानी के शरण में जो अनुभवी पुरुष है उनके शरण में नहीं जाना है, अपना प्रसन्न से अभिप्राय रखना है, मेरा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये बात प्रसन्न की है, इसमें बहुत नुकसान हो जाता है, कहां कितना हो जाता है उसका पता नहीं चलता। इसलिए मुमुक्षु के लिए भलाई तो वो है कि वो जिज्ञासा में रहे, जहां तक अपना ज्ञान परिपक्व नहीं हो, सम्यक ज्ञान नहीं हो, मैच्योरिटी नहीं आवे, वहां तक हमें कोई अभिप्राय में अपना कोई विशेषता दिखाने के लिए भी अपना दापन करना नहीं, ये दापन वाली बात हो जाएगी, नुकसान बड़ा हो जाएगा। इतना गंभीर विषय है। इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि सत्पुरुष के लक्ष्य से शास्त्र का सुनने का या अनुप्रश्न करने का परिचय रखे, इसी कारण से सत्पुरुष का लक्ष्य मुख्य किया है। अभी उसे पढ़ने और सुनने में नित्य प्रति दो से चार घड़ी नियम पूर्वक व्यतीत करना योग्य है। मैंने शास्त्र स्वाध्याय नियम रूप से दो चार घड़ी रोजाना होना योग्य है, इसलिए दूसरे परिणाम को वो दो चार घड़ी हट जाएंगे और अपना उपयोग जो है वो शास्त्र में लगेगा। एक पुरस्कार लिखा है, इसके बाद 745 नंबर का जो पत्र है वो सौभाग्य भाई के ऊपर है, और उस पत्र में देव गुरु शास्त्र की बहुत महिमा की है और शुद्ध ज्ञान की महिमा विशेष रूप से कही है। સત્પુરુષની આજ્ઞામાં એ અભિપ્રાય બાંધવો બરાબર છે કે સત્પુરુષની આજ્ઞામાં રહેવું, અને ત્યાં પણ જિજ્ઞાસામાં રહેવું, ત્યાં પણ જિજ્ઞાસામાં રહેવું, એ એક વિશેષજ્ઞ છે, આત્મજ્ઞાન છે વિષયને જો વિશેષજ્ઞ હૈ, જૈસે ડોક્ટર કી સલાહ લેતે હૈ तो उसमें अपना रुचि मुझे खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, दवाई ले नहीं सकते, सब उनके शरीर में रहना पड़ता है। वैसे सत्पुरुष के चरण में उनको कहने के अनुसार चलना है, और उसमें भी जो विचार शक्ति है अंधश्रद्धा से नहीं चलना है, विचार शक्ति से उसको तोड़ना है। तो कैसे सही कहते हैं, सही कहते हैं तो कैसे सही कहते हैं, ऐसा दिमाग खुला रख करके चलने की बात है। इस तरह
ऐसा तेरह 700 गुरु को सुप्रीम
माना
यहाँ चर्चा आती है सबको।
हाँ
सत्पुरुष को भी बात है, भ्रांत कहती है, सत्पुरुष को भ्रांत कहती है।
अच्छा देखिए,
शत्रु साथ विद्वान हो सकता है, विद्वान हो सकता है,
न्यायी
हो सकता है, लेकिन गुरु तो नहीं हो सकता। शत्रु तो याद के बिना गुरु होते ही नहीं।
ऐसा है कि जो गुरु शास्त्र में जो गुरु का स्थान है वो तो निग्रंथ गुरु का ही है, बिना ज्ञान का संकट विचार नहीं है। अब देखिए कि देव में सर्वज्ञ देव हैं तो इस काल में उपलब्ध नहीं है, कोई का जमाना पूरा हो गया, महावीर स्वामी के बाद कोई का जमाना पूरा हो गया। सब बात रही सजीवन मूर्ति तो तीन होते हैं, जो अंतर्मुख परिणमन रूप जो जिनमार्ग है, जिनमार्ग कैसा है तो जिस परिणमन का मुख अंतर्मुख है आत्मा के प्रति है, उसके सजीवन मूर्ति तीन ही है जगत में। एक सर्वोत्कृष्ट सर्वज्ञ देव, दूसरे भावलिंगी रहे मुनिराज आचार्य आदि, और तृष्टि से अनुभवी जो है वो सत्पुरुष ज्ञानी है। चाहे वो विद्वान हो नहीं भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें उसको विद्वत्ता होगी, वो कोई जरूरी नहीं है, विद्वान नहीं भी हो सकता। अब बात रही अभी कोई संभव है तो मुनिराज का संभव हो सकता है, लेकिन 28 मूल गुण भी हो इसका व्यवहार शुद्ध नहीं हो, उसका अंतर्मुख परिणमन हो सकता नहीं या रह सकता नहीं है। ये एक हमारे मूल कोड है, हमारे दिगंबर दर्शन का ये एक मूल कोड है कि 28 मूल गुण पंच महाव्रत समिति गुप्ति, उसको मूल गुण कहा है। उत्तर गुण तो थोड़ा सा रात हो जाती है, उसमें बांधछोड़ होती है, मूल गुण में कहीं बांधछोड़ नहीं होती है। तो अगर बाह्य व्यवहार में जिसको मूल गुण भी नहीं है तो देश में दिगंबर होने पर भी मुनि नहीं हो सकते, तो यहां से वो मार मिलने वाला नहीं है। अब बात एक जगह की रहेगी कि अगर कोई ज्ञानी हो भले ही गृहस्थ हो, तो अगर कोई देश में अलग गुण मिलेगी तो वहां से मिलेगी। क्षीर समुद्र में दूध से भरा हुआ है और स्वयं गुणों में समुद्र में भी बहुत पानी है, लेकिन हमें प्रसाद इधर लगी है वो पानी हमारे फिर समुद्र का कौन सा काम ना, स्वयं गुणों में समुद्र का पानी कितना भी हो हमें तो कोई काम का नहीं है। हमारे जो क्षेत्र में सर्व जो भगवान प्रत्यक्ष है, मुनिराज भी प्रत्यक्ष है, क्या कहें, सब शास्त्र है वो परोक्ष चीज है, प्रत्यक्ष नहीं है। कहीं हमारा समझ में गैर समझ हो जाएगा तो शास्त्र नहीं बताएगा कि तुम के ये तुम्हारी भूल है समझने में, ये तो शत्रु से बता सकता है। इसलिए इस काल में अगर हमें हमारी जरूरत को नहीं समझे तो जैसे हम समाज संसार समुद्र में डूब रहे हैं, समुद्र के मध्य में हम डूब रहे हैं, और हम ये विचार रखें कि डूबने से बचने में अगर कोई स्टीमर मिल जाए तो हम बच सकते हैं, सारा लेकर के स्टीमर में बैठ जाए, अगर कोई होड़ी भी मिल जाए तो इससे भी हम बच सकते हैं, या हमें कोई पतिया मिल जाए तो उसको पकड़ करके भी हम
बच सकते हैं।
अब हम बचते हैं किसी से भी बचते हैं, अगर हम शर्त रखे डूबते डूबते कि स्टीमर मिलेगी तो हमें बचना है, वरना हमें पतिया पतिया से बचना नहीं है तो मर जाएंगे डूब जाएंगे, और हमें पतिया से बचना है बच गए तो हम 100% बचे या हमें कुछ बचने में कमी रह गई क्या। तो डूबने वाले को उतना भान हो जाए कि मुझे तो डूबना नहीं है, मुझे मरना नहीं है, मुझे जिंदा रहना है, तो कोई भी सारा पेड़ पकड़ लेगा जो भी हाथ में आया, पतिया को जाने जो स्टीमर आएंगे तब मैं पकड़ूंगा, मूर्ख है उसको डूबता है मर जाएगा उसका भी उसको ख्याल नहीं। तो हमारे इस वक्त की परिस्थिति क्या है हम देखें कि हमारे जिस जमाने में हम पैदा हुए हैं, जिस काल में हम पैदा हुए हैं, वहां कौन सी परिस्थिति है, तो वास्तव में तो मिलने वाली है। अभी सोडनमल जी साहब 175 साल पहले वो बात लिखा है कि हमारे संप्रदाय में पिछले 5-6 सैकड़ों से उन्हें धर्म देखा नहीं जाए, देखता नहीं, देखते नहीं हम, लोप हो गया है उन्हें धर्म का। क्या कौन से प्रकार पहले पहले किताब है नोटवार प्रकाशन और लिखा है कि पिछले 5 सैकड़ों में 6 सैकड़ों में कोई मुनि धर्म देखने में नहीं आता है। अब क्या करें? तो अब तो जिसने रास्ता देखा है उसका सहारा लेना पड़ेगा। हम भूले पड़े हैं संसार में, रास्ता नहीं मिल रहा है चलने का, और अंधकार में आने वाला मनुष्य ही अनिश्चित रूप से चलता है, कभी खत्म हो जाएगा किसी को पता नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हमें आत्मनिर्भर करना है, गुरुदेव हमारे दृष्टान देते थे तो एक बार तेरा मनुष्य जीवन बिजली का जबकार जितना है अनंत काल में कितना समय है तेरे पास? बिजली का चमकार जितना है, और तुम्हें तुम्हारी सोल में डेरा डेरी डाल देनी है। अंधेरा में तो जाए तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कैसे डेरी लगाए, फल के नाते में तो चमकार आया उसमें लगा दे तेरी सोल, फिर खोने वाली नहीं, अकेली सोल होगी, खो जाएगी, डेरी के साथ होगी, मिल जाएगी, कहीं भी खड़ी होगी मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो ये सम्यक दर्शन ऐसी चीज है कि अगर ज्ञानी पुरुष से देशना लग्न से अगर सम्यक दर्शन तक पहुंचा दी तो उसका मोक्ष मार्ग चालू हो गया। ये सोल अभी संसार के परिभ्रमण में खोने वाली नहीं है, वरना ये अनंता अनंत जीव इतने भरे हैं चारों ओर एक ब्रह्मांड में, इतने अनंत अनंत जीव भरे हैं, कहां कौन गया किसी का पत्ता लगने वाला नहीं है।
एक सब है भी बन रहे हैं इस परंपरा के हटते होते हैं या उसके बाद जानते हुए कि अपना आत्मकल्याण करने के लिए होते हैं और वो आत्मकल्याण के साथ साथ दूसरे का भी उनके माध्यम होता है, होता है तो अपने आत्मकल्याण के लिए करते हैं, वो दूसरे के लिए नहीं करते, वो अपने हित के लिए करते। लेकिन हम देखते हैं कि वो क्यों ऐसा ऐसा क्यों बात ऐसी बात क्या उनको आत्मकल्याण मिले?
भगवान ने जो भी
जाए शास्त्रों की बात बोलाई
है ये भगवान की मर्यादा है, आज्ञा है, शास्त्र है तो भगवान की आज्ञा है। विनयेंद्र देव की आज्ञा पर पैर रख के चलने का किसी को अधिकार नहीं है, हम इसकी आज्ञा को तोड़ सकते नहीं, किसी को ऐसा लाइसेंस नहीं दिया गया कि तुम भगवान की आज्ञा को तोड़ करके अपनी मनमानी करो, ये नहीं बन सकता। तो भगवान की आज्ञा में रहना, जो सर्वज्ञ केवली तीर्थंकर परमात्मा हुए हमारे, उन्होंने अपने मार्ग अनुभव होकर के कहा, इसलिए अनुभूति का मार्ग कहने में आता है कि मेरा अनुभव ये बोलता है, ये साइंस है, ये कोई रूढ़ि रिवाज को संप्रदाय नहीं है, ये तो विज्ञान है, जिस विज्ञान से हमने सिद्धि प्राप्त की है सर्वज्ञता के, उस विज्ञान से दूसरे प्रकार से ये काम होने वाला है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। क्या कोई होगा दूसरी पद्धति से बनता है कभी
नहीं?
तो पहले